नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों और कतर के प्रधानमंत्री के साथ पश्चिम एशिया स्थिति पर चर्चा की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कल तक होर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोलने पर उसके विद्युत संयंत्रों और पुलों को उड़ाने की धमकी दी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने मई से उत्पादन और बढ़ाने का निर्णय लिया। भारत ने हाल की बाढ़ और भूकंप के बाद अफगानिस्तान को मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजी और भारत का 30 सदस्यीय कुश्ती दल आज से किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी और कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से फोन पर बात की। पश्चिम एशिया संघर्ष की मौजूदा स्थिति और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर इसके असर को लेकर बातचीत हुई। श्री जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से भी फोन पर बातचीत की। पश्चिम एशियाई देशों के नेताओं के साथ डॉ जयशंकर की बातचीत क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच हुई है। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य बंद किए जाने से तेल और गैस की वैश्विक कीमतें आसमान छू रही हैं। इस जलडमरू मध्य से वैश्विक तेल और गैस की लगभग 20% आपूर्ति होती है। पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा खरीद का प्रमुख स्रोत रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कल तक होर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोलने पर उसके ऊर्जा संयंत्रों और पुलों को उड़ाने की धमकी दी है। उन्होंने ईरान को भयंकर परिणाम भुगतने की धमकी दोहराई, लेकिन यह भी कहा कि ईरान के साथ समझौता हो जाने की पूरी आशा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों के सामान्य परिवहन पर रोक लगा दी है। इससे वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और पूरी दुनिया में मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
पूरी दुनिया का ध्यान अब अमेरिका द्वारा ईरान को दिए गए होर्मुज जलडमरू मध्य के 48 घंटे के अल्टीमेटम पर है। ये समय सीमा कुछ ही घंटों में समाप्त हो जाएगी। अब तक कोई समझौता न होने के कारण जारी संघर्ष के और भड़कने की आशंका है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते की भी प्रबल संभावना जताई है। उधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के अल्टीमेटम को खारिज कर दिया और चेतावनी दी है कि वे दबाव में बातचीत नहीं करेंगे। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने एक वर्चुअल बैठक में मई से तेल उत्पादन 2,06,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। यह कदम पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक।
उधर ईरान के संस्कृति मंत्री ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के लिए खुला है, लेकिन ईरान के दुश्मनों के लिए ये पूरी तरह बंद है। इस बीच ईरान की राजधानी तेहरान में कल रात कई हवाई हमले हुए। इन हमलों में 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि हवाई हमलों में किसे निशाना बनाया गया। इसराइल ने भी कल रात एक मिसाइल अलर्ट जारी किया। दुबई में 2 अलर्ट जारी किए गए और वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय की गई। कुवैत ने भी कल रात कई बार अपनी वायु रक्षा प्रणालियों को सक्रिय किया। ईरान के दैनिक अखबार ने शियाओं के पावन स्थल कोम में आवासीय क्षेत्र पर हमले में 5 लोगों की मौत की खबर दी है। ओमान और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर नौवहन आसान बनाने पर बातचीत की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण प्रमुख वैश्विक नौवहन मार्ग बंद हैं। दोनों देशों के अधिकारियों ने तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक में इस रणनीतिक जलमार्ग से होकर सुरक्षित नौवहन बहाल करने के विकल्पों पर विचार किया। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच एयर इंडिया ने इसराइल के लिए अपनी उड़ानें रोक दी हैं। एयर इंडिया के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नई दिल्ली तेल अवीव मार्ग पर उड़ानें 31 मई तक निलंबित रहेंगी। उड़ानें निलंबित होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसराइल से निकलने के लिए जॉर्डन या मिस्र से होकर आना होगा। इसराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह और दूतावास की टीम ने शनिवार को भारतीय कामगारों और विद्यार्थियों के साथ वर्चुअल बातचीत की और उन्हें लगातार सहयोग का भरोसा दिलाया। भारतीय ध्वज वाले एलपीजी टैंकर ग्रीन आशा ने ईरान के निकट होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर लिया है। मौजूदा जारी संघर्ष के बीच इस महत्वपूर्ण मार्ग से सुरक्षित निकलने वाला ये नौवां भारतीय जहाज है। जोखिमों में के बावजूद भारतीय जहाजों की गतिविधियां सुरक्षित बनी हुई हैं। पहले भेजे गए जहाजों में एलपीजी वाहक BWTYR, BWELM, पाइन गैस और जग वसंत शामिल हैं। इनमें सामूहिक रूप से 92,000 टन से अधिक एलपीजी की आपूर्ति हुई। वहीं तेल टैंकर जग लाडकी और जग प्रकाश ने संयुक्त अरब अमीरात और ओमान से कच्चा तेल और गैसोलीन का परिवहन किया। इसके अलावा ग्रीन सानवी ने करीब 46,650 मीट्रिक टन माल के साथ अपनी यात्रा पूरी की। नेपाल सरकार ने पेट्रोलियम आपूर्ति में व्यवधान के मद्देनजर सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में 2 दिन का साप्ताहिक अवकाश देने का निर्णय लिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
नेपाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 6 अप्रैल से शनिवार और रविवार को सार्वजनिक अवकाश देने का फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक का यह फैसला आज से सभी सरकारी दफ्तरों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू होगा। साथ ही कार्यालय के कार्य अवधि में भी संशोधन करके 9 से 4 बजे की बजाय कार्यालय समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर दिया गया है। सामान्यतः नेपाल में रविवार सप्ताह का पहला कार्य दिवस हुआ करता था। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, काठमांडू।
वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल के संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। आज शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 2.2% बढ़कर $111.43 प्रति बैरल हो गई। वहीं अमरीकी क्रूड की कीमत 2.7% बढ़कर $114.57 प्रति बैरल पर पहुंच गई। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने हाल की बाढ़ और भूकंप की कठिन स्थिति से जूझ रहे अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राहत सामग्री में किचन सेट, स्वास्थ्य किट, प्लास्टिक शीट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक चीजें हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में अफगानिस्तान के लोगों के साथ है। सेंट किट्स एंड नेविस के विदेश मंत्री डेंजिल डगलस कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री डगलस की यात्रा दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों और परस्पर सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उनकी यात्रा के दौरान भारत में सेंट किट्स और नेविस उच्चायोग का उद्घाटन होगा। भारतीय पहलवान आज किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत भारत के 30 सदस्यीय दल का नेतृत्व करेंगे। इस प्रतियोगिता में भारत अनुभवी और युवा पहलवानों के साथ उतर रहा है। भारत के शीर्ष पदक दावेदारों में 61 किलोग्राम भार वर्ग में अमन, 57 किलोग्राम भार वर्ग में अंकुश और 65 किलोग्राम भार वर्ग में अंडर 23 विश्व चैंपियन सुजीत कलकल शामिल हैं। सुनील कुमार 87 किलोग्राम भार वर्ग में ग्रीको रोमन कुश्ती टीम का नेतृत्व करेंगे। वहीं महिला टीम में मीनाक्षी गोयत और मनीषा भानवाला भारतीय चुनौती पेश करेंगी। प्रतियोगिता का समापन 12 अप्रैल को होगा। आईपीएल T20 क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। कोलकाता में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया। एक अन्य मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रन से मात दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों और कतर के प्रधानमंत्री के साथ पश्चिम एशिया स्थिति पर चर्चा की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कल तक होर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोलने पर उसके विद्युत संयंत्रों और पुलों को उड़ाने की धमकी दी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने मई से उत्पादन और बढ़ाने का निर्णय लिया। भारत ने हाल की बाढ़ और भूकंप के बाद अफगानिस्तान को मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजी और भारत का 30 सदस्यीय कुश्ती दल आज से किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।